ये आकाशवाणी दिल्ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1600 से अधिक होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, जल्द ही कई नई मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद ने नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज 1600 से ज्यादा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से 181 उम्मीदवार महिलाएं और 19% पूर्व नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक हैं। उपराज्यपाल ने नई भर्तियों के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को उनके कर्तव्यों के लिए तैनात किए जाने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में और अधिक होमगार्ड्स नियुक्त किए जाएंगे। उपराज्यपाल ने नेतृत्व में दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मेहरोली पुरातत्व पार्क में स्थित कुली खान के मकबरे, मेट ऑफ स्टेट और दोमुखा दरवाजा स्मारकों का पुनर्निर्माण किया है। दिल्ली राजनिवास ने बताया कि इस समय बलबन का मकबरा, राजों की बावली और अन्य स्मारकों पर पुनर्निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कुशकनाला डिपो में मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहल्ला बसों को दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अगले 2 सप्ताह में 150 मोहल्ला बसें चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वर्ष तक कुल 2140 मोहल्ला बसें दिल्ली की कॉलोनियों को आपस में जोड़ेंगी।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करने के लिए 2000 से ज्यादा ऐसी मोहल्ला बसेस को दिल्ली में उतारा जाएगा। 2025 में ही ये 2140 बसेस हैं जो उतर जाएंगी और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर 150 मोहल्ला बसेस दिल्ली की सड़कों पे दिखेंगे। इसमें सीसीटीवी कैमरास, पैनिक बटन और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन बसेस की है कि बिल्कुल साउंडलेस बसेस।
आम आदमी पार्टी के विधायक को कुरान के अपमान के मामले में सुनाई गई सजा के बाद प्रदेश भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन कर विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की। इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने कुरान का अपमान किया और पंजाब की एक अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं।
कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ की बेद भी करते हैं विधायक नरेश यादव। पंजाब की मलेर कोटला की जो कोर्ट है वो सजा सुनाती है 2 साल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल गुंगे बने हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती शाजिया इल्मी ने भी इस मामले में आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। श्रीमती इल्मी ने एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी की एक और काली करतूत सामने आई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष होने का ढोंग करते हैं। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर राजधानी के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 9 रुपए प्रति यूनिट और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट की सबसे महंगी बिजली उपलब्ध करा रही है। श्री विधोड़ी ने राज्य सरकार पर दिल्ली परिवहन निगम के लिए बस नहीं खरीदने का भी आरोप लगाया है।
अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास बसेज है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये घोषणा की थी कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। एक बस वे खरीद नहीं पाए। जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली के पास लगभग 7,000 बसें थी, आज वो घटकर 2,500 हो गए, वे भी आउटडेटेड है।
प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के खातों की अगले 5 वर्षों के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कैग की जांच के जरिए विश्वविद्यालय की वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन को दूर करने में भी मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी का अनुसरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, कौशल को विकसित करने, उन्हें रोजगार देने, उनके उत्पादों को खरीदने की प्राथमिकता देने और बाजार की सुविधाएं प्रदान करने से दिव्यांगजनों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपनी दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण स्वरूप कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के पुरस्कार विजेता प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। ये अभियान इस तथ्य का प्रमाण है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र न होकर संवेदना के पात्र हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को सहज और समानता का अनुभव कराना पूरी मानवता का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हर दृष्टिकोण से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।
आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष का विषय समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इस पहल से दिव्यांगजनों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए सुलभता, समानता और अवसर बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के धैर्य तथा उपलब्धियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने 2016 के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का उल्लेख किया और कहा कि ये दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के कर्तव्य को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिवस समावेशिता को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करने और सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में दिव्यांग बच्चों के लिए सृजन कला और शिल्प कार्यशाला के 3रे संस्करण का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक भारत और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के सहयोग से आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिव्यांगों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने के लिए विभिन्न गतिविधियां और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
इस वर्ष का थीम समावेशी और सतत भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना है। कार्यशाला में बच्चों ने कैनवस पर अपने कौशल को खूबसूरती से प्रदर्शन किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला ने बताया कि कार्यशाला में अपनी कला दिखाने के लिए बच्चों को 10 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
हमारे 10 मेंटर आर्टिस्ट थे यहाँ पर, जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी डिसेबिलिटी के ऊपर आर्ट वर्क बनाया, जिसको सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। इसमें 4 बच्चे थे, चारों को अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है इस फोटो में, लेकिन चारों एक दूसरे का सहारा बनके एक पूरा एक मुट्ठी की तरह सबकी मदद कर सकते थे और सारे काम वो कर पा रहे हैं, इसको दिखाने का प्रयास किया।
हिमाचल प्रदेश से आई अहिदा सरमाई नामक एक प्रतिभागी ने भी कार्यशाला में भाग लेने पर खुशी व्यक्त की।
मैं बहुत कोशिश करी, यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने यहाँ पे फोटोज क्लिक कराए, फिर यहाँ पे एग्जीबिशन भी कराए। मैंने यहाँ पे पेंटिंग सीखी है, मैं बना रही फ्लावर्स।
दिल्ली से आए बिलाल नामक एक अन्य प्रतिभागी ने कार्यशाला में भाग लेने वाली गतिविधियों के बारे में बात की।
यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाई है, वहाँ पर मैंने बनाया फ्लैग बनाया है और सूरज बनाया है, पहाड़ ऐसे बनाए हुए हैं। ड्राइंग बहुत बढ़िया मैंने बनाई है और मुझे आके भी यहाँ बहुत अच्छा लगा, इससे पहले भी मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ।
केंद्र सरकार ने विभिन्न नीतियों और अभियानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में देश भर में दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए 16 नई गतिविधियों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्रयास समग्र समाज के निर्माण की दिशा में सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सरकार और विपक्ष के 5 दिन के गतिरोध समाप्त होने के बाद आज सामान्य रूप से शुरू हुई। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद ने नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमलावर पोत तट के निकट कम तीव्रता की समुद्री कार्रवाई, निगरानी, गश्त, खोज और बचाव कार्यों के लिए तैयार किए गए हैं। ये पोत विशेष रूप से भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास डकैती रोधी अभियान में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है और महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व को अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रित विकास हासिल करना है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा अगर हमारी आधी आबादी घर में बंद है तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम जा रहे हैं। हमारी सरकार ने लगातार 2014 से ये प्रयास किया है कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, महिलाओं को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या फिर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हों।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष सबक चुनौती और संभावना विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। एक रिपोर्ट।
इस कार्यशाला का उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी के दीर्घकालिक प्रभावों पर चिंतन करना और भारत में औद्योगिक और रासायनिक सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना था। कार्यशाला में सुरक्षा प्रोटोकॉल, जोखिम न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों में पिछले 4 वर्षों में हुई प्रगति का विश्लेषण किया गया। कार्यशाला के मुख्य विषयों में भोपाल त्रासदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सुरक्षा नियमों पर इसका प्रभाव, भारत में नियामक और नीति ढांचे का विकास, तकनीकी प्रगति और सामुदायिक भागीदारी शामिल थे। इस कार्यशाला में रासायनिक उद्योग में कोल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के जौहरीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आज सिलेंडर फटने के कारण एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मी ने बताया कि 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 बजे तक आग पर नियंत्रण पा लिया था।
ये 12:03 और 12:04 पे कॉल मिली थी कि फैक्ट्री में आग है। शुरू में 3 गाड़ी भेजी गई, उसके बाद हमारे गाड़ी पहुंचने के बाद में देखा कि आग दिया और यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। LPG सिलेंडर 4-5 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फायर को कैटेगरी वाइज मेक फोर किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। आज दोपहर 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 272 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में सूचकांक 300 से भी ऊपर रहा। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि धुंध छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1600 से अधिक होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलेंटियरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कहा है कि जल्द ही नई मोहल्ला बसों को चलाया जाएगा। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर राजधानी में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद ने नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।